ओम शांति। बाबा हम सभी का श्रेष्ठ भाग्य बनाने आया है। सभी बाबा से मिले हुए भाग्य से संतुष्ट हैं? हैं बच्चे, संतुष्ट हैं? समझ में आती है ये बात? देखो ये आगे सबसे छोटा स्टूडेंट कहते हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो बाबा हमें क्या क्या भाग्य देता है? कुछ वर्तमान के भाग्य हैं, कुछ भविष्य के, और उनको प्राप्त करने की विधि क्या है, इस पर आज चर्चा करेंगे। क्या क्या भाग्य देता है वर्तमान में? बाबा से हमें क्या क्या मिलता है? सब जानते हैं, कोई गंभीर प्रश्न नहीं है। बोलो। एक खुशी मिलती है, क्योंकि खुश रहना भी बहुत बड़ा भाग्य है। है या नहीं? खुश रहना आजकल मुश्किल होता जा रहा है। जब तक छोटे बच्चे हैं तो खुश हैं, आजकल कई छोटे बच्चे भी खुश नहीं रहते। पढ़ाई का बोझ, साथियों का व्यवहार, शुरू से ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। खुशी एक भाग्य के रूप में मिले। दूसरा बोलो। सुरेश भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या मिला? ज्ञान भी बहुत बड़ा भाग्य है, नो डाउट। रास्ता मिल गया ना, सत्य की तलाश में हम सभी विशेष बहुत भटकते थे, क्योंकि हमने पूर्व कल्प में सत्य को पाया था, तो द्वापर युग से ही सत्य की खोज और शिव बाबा के लिए आकर्षण हमारे मन में पैदा हो गया था, दोनों की तलाश थी। इसलिए शुरू से ही शिव की भक्ति बहुत रही, तो सत्य ज्ञान भी बहुत बड़ी चीज हमें मिल गई। रतन है ये, अविनाशी रतन है, और इनसे भविष्य में क्या मिल जाता है? ज्ञान धन से क्या मिल जाता है? अब तो समझ में आ गई क्या? बोलो माताएं उमंग से। नहीं, आगे वालों को नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे वर्षा नहीं, ज्ञान खजाना मिल गया, इससे सतयुग में क्या मिलेगा? माताओं को पता नहीं, भाई भाई बताओ, स्थूल खजाना माताओं को नहीं पता। जिसके पास ज्ञान धन जितना होगा, स्थूल धन उतना ही ज्यादा मिलेगा। उसमें भी जो ज्ञान धन दान करेंगे, उनके पास अविनाशी धन बहुत आएगा। और आगे चलो, क्या भाग्य मिला संगम पे? आप बोल नहीं रहे, अभी नशा चढ़ा नहीं है, चढ़ाओ जरा। भाग्य विधाता ही अपना हो गया। सबसे बड़ा भाग्य स्वयं भगवान ही हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया। दादी कहा करती थी, वो सब बहुत भाग्यवान होते हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं। मेहमान आते थे ना मधुबन में, तब मधुबन छोटा भी था, तो दादी हमेशा कहती थी बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आते हैं। और जिनके घर में स्वयं भगवान मेहमान बनकर आ गया हो, उनके भाग्य स्वर्ण अवसरों में लिखे जाएंगे। और भाग्य आगे चलो, बाबा ने आकर हमें एक और चीज दी है, जिसकी फीलिंग ब्राह्मणों को काफी कम है, और हमें उस फीलिंग को बढ़ाना है, और वो है बाबा से हरेक को वरदान भी मिले हैं। पता है माताओं को? माताओं को नहीं मिले है ना, बाबा ने दिए नहीं, भाइयों को दे दिए सारे। माताओं को कलश दे दिया, भाइयों को वरदान दे दिए। ठीक है, ऐसे ही हुआ या मिले वरदान? किस किस को मिले हाथ उठाए जरा। अच्छा, बहुत सारे मिले। अब माताओं में रौनक आई थोड़ी, नहीं तो ठंडी बैठी थी। तो वरदान सबको बहुत मिले हैं। बड़ी गुह्य बात है ये, सदगुरु के रूप में बाबा ने हमें वरदान दिए हैं। उन वरदानों को यूज करके विश्व की सेवा करना ये अपने हाथ में है। वरदान बाबा देता है। मैं एक वरदान की चर्चा करूं, तुम विघ्न विनाशक हो। वरदान दिया या नहीं, पर लाखों ब्राह्मणों में से थोड़ों को पता है कि हम विघ्न विनाशक हैं। उनके पास विघ्न आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, बाबा इन विघ्नों को हटाओ। बाबा कहता है तुम हटाओ, विघ्न विनाशक तुम हो। अपने वरदानों को जानना, उसे स्वीकार करना, उसे सेवाओं में लगा देना, ये सबसे बड़ा काम है। और भी वरदान बाबा से हमें मिले हैं। वरदानों को किसकी बुद्धि धारण कर सकती है ये भी याद रखना है। जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं, उस बुद्धि में वरदान को धारण करने की शक्ति आ जाती है। वरदान बहुत बड़ी चीज है। किसी को ये भी वरदान मिला है, तुम इस देवी हो, इस देव हो, तुम अपने मुख से जो बोलोगे वो दूसरों के लिए वरदान हो जाएगा, ये भी वरदान मिला है। लेकिन ये कितनों को पता है इस पे निर्भर करता है, किसने इसको स्वीकार किया है कि ये मुझे वरदान है, ये इस पे निर्भर करेगा। एक और सबसे बड़ा वरदान होता है जो कुछ आत्माओं को प्राप्त है, वो वरदान है तुम जो संकल्प करोगे वही सिद्ध होगा। ये सबसे बड़ा वरदान होता है। वाचा के वरदान मिलते सबको हैं, पर फलीभूत उनका होता है जो वाचा को कम यूज करते हैं। जो वाचा की शक्ति को बहुत यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं, उनका ये वरदान समाप्त हो जाता है। बोल में भी वरदान है। माताओं की शिकायत होती है, बच्चे हमारी सुनते नहीं। बच्चे क्या कहते हैं, सुनते हैं या नहीं, बोलो चारों। बच्चे सुनते हैं मम्मी की? नहीं सुनती, ये आगे वाली नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वाचा को वेस्ट बहुत करते हैं। और संकल्पों का वरदान किसको मिलेगा? अब तो आ गया उत्तर, जो व्यर्थ से मुक्त हैं। मैं एक मुरली पढ़ रहा था, थोड़ी सी पड़ी मुरली, मैंने दो मिनट, फिर कोई आ गया मिलने। उसमें था समय और संकल्प का बड़ा महत्व है, बाबा सुनाते आ रहे हैं। व्यर्थ से जो मुक्त हो जाएंगे वो संकल्पों का चमत्कार देखेंगे। मुझे बहुत प्रिय लगी। जो आत्माएं व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगी वो संकल्पों की शक्ति का चमत्कार देखेंगे। बहुत बड़ी चीज हो गई। तो बाबा से हमें ये सब भाग्य मिले हैं। आने वाला समय, और आने वाले समय में सेवा किसके द्वारा होगी, इस पर जरा हम गौर किया करें। सेवा बोल से होती है। बहुत सब बाबा के बच्चे करते हैं, जहां बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो भाषण के द्वारा हो, चाहे प्रदर्शनी मेलों के द्वारा हो, आजकल और भी कई लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं। आपको पता हो, शहर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, महाराष्ट्र के एक भाई ने, इंजीनियर है, दो अच्छी बसें खरीद ली, उनमें बाबा के चित्र लगा दिए, सारे प्रबंध कर दिया, बैठने सोने का जो चलेंगे, और दे दिया कि इसे यूज करो सारे भारत में, बुझा रही। एक आपने देखा हो, अभी हिमाचल गई है 2 मास के लिए, वो भाई यहीं आए थे बस को लेकर, यहाँ से एक भाई और उसके साथ गया, उसके साथ भी एक दो थे, बाकी वहां के लगेंगे, सेवा होती है। किसी ने ट्रेन बना दी, माताओं ने देखी ट्रेन, अपनी ट्रेन की 4 डब्बे शायद लगा दिए छोटे छोटे, उनपे प्रदर्शनी के चित्र सजा दिए, देखने में लगती है ट्रेन छोटी सी, और जिस गांव में जाएगी गांव वाले उमड़ पड़ेंगे, ट्रेन आई है। तो ये सब भी बाबा की सेवाओं के बहुत अच्छे साधन हैं। जो कर रहे हैं वो भी भाग्यवान है। मैंने पूछा उस इंजीनियर भाई ने ये 2 बसें दी, कहा बिल्कुल वो कुछ नहीं इसमें रखता अपना संबंध, दे दिया भाई इसको, घुमाओ सारे भारत में, कहीं भी जो भी मांगे वहां ले जाओ इसको और सेवा करो। कई लोग क्या करते हैं, सेवा में कोई साधन देकर मेरा अधिकार है, मेरे बिना पूछे ये हिले भी नहीं, तो वो खड़ी रहती है गाड़ी उनकी, वो भी खड़े हो जाते हैं, गाड़ी भी खड़ी हो जाती है, सेवा होती नहीं। जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, जो मैंपन से मुक्त होकर सेवा करते हैं, जो कुछ भी करके अपना अधिकार छोड़ देते हैं, वो महान। और जिन्होंने पकड़ के रखा है मेरी है, उनका भाग्य वहीं से कटना प्रारंभ हो जाता है। दूसरों को सुख मिलता रहेगा, वो मैंपन के कारण दुखी होते रहेंगे, देखा मेरे से पूछा नहीं, देखा मेरे से पूछा नहीं, सब सुख पा रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं। ये भाग्य को कम करने वाली चीजें हैं। आने वाले समय में क्या होगा, कौन सेवा कर सकेंगे, बोलो भाई बताएंगे इसका उत्तर। यहाँ वाले बताएं, सुरेश, आने वाला समय हमसे कुछ मांग करेगा, कर रहा है, समय विकराल रूप लेता जा रहा है, दुनिया बाहर से सुंदर नजर आ रही है और अंदर से बिल्कुल खोखली, रोग बढ़ते जा रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है, तंत्र मंत्र भूत प्रेतों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो एक तरह से संसार समस्याओं में गिरता जा रहा है, और ये हो रहा है पाप कर्मों के कारण, ये हो रहा है विकारों की अति के कारण। अब अंत होगा इन सब का, तो हमें कौन सी सेवा करनी पड़ेगी, दृष्टि के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, शुभ वाइब्रेशंस के द्वारा, आज भी था ना मुरली में वरदान, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा। मुझे एक बात बहुत प्रिय लगी है, आप में से भी जो करना चाहें करें, ग्लोब के ऊपर खड़े होकर सारे संसार को दृष्टि दो, करना जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, मैं पूर्वज हूं, इस गुड फीलिंग में आकर एक जगह खड़े होकर, जैसे हम ग्लोब के ऊपर खड़े हैं, सारे संसार को दृष्टि दे दो, हमारी दृष्टि से क्या जाएगा, वही जो हमारे अंदर होगा, जो हमारी वृत्ति में होगा, जो हमारी फीलिंग्स में होगा, वो हमारी दृष्टि से सारे संसार में जाएगा। संकल्प कर दो सभी आत्माएं सुखी हो जाए, सभी आत्माएं विघ्नों से मुक्त हो जाएं, सभी आत्माएं व्यसनों से मुक्त हो जाएं। ये सेवा सबको बहुत करनी है, केवल अपने में ही उलझ कर नहीं रह जाना है। ध्यान दे दें सभी, अपने में उलझ गए, अपने परिवार में उलझ गए, अपने बच्चों में उलझ कर रह गए, तो आगे आने वाले समय में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ये उलझन बढ़ती जाएगी। मुझे आज एक फोन आया, मुझे उसकी फीलिंग्स हो रही हैं कि देखो व्यस्त मनुष्य को क्या करते हैं। एक व्यक्ति आयु केवल 37 साल, 37, शराबी, दो बार यहां भी आया प्रोग्राम्स में, प्रतिज्ञा की शराब नहीं पीऊंगा, उसके युगल ज्ञान में है, बहुत समझदार है, वो उसे छोटी है। मेरे को आज फोन किया, अब कुछ दिन पहले ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने पूछा क्या हुआ, कि बहुत शराब पीते थे, चाहते भी थे छोड़ दूं, लेकिन व्यसन के इतने आदि हो गए थे कि छोड़ ही नहीं पाए। मैंने पूछा क्या हुआ, डॉक्टर जानते हैं, कहा लीवर खराब हो गया, मृत्यु हो गई। तो देखो कितनी बड़ी समस्या हो जाती है पूरे परिवार के लिए। अब बच्चे हैं, छोटे हैं, ये माता भी अभी 35 साल की है, कहा उसकी जगह मुझे नौकरी दे दी गई, अब ये नौकरी भी करे, बच्चों को भी संभाले, खाना पीना भी करे उनका, कितना कठिन हो जाता है काम। एक व्यसन परिवार को बर्बाद करने वाला है ना, ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें दृष्टि से, वाइब्रेशन से, और सबसे बड़ी सेवा होगी साक्षात्कार से, इसकी ओर चलना है। सभी जो भी संसार को कुछ देना चाहते हैं, बहुत बाबा के समझदार बच्चे बैठे हैं, जो भी संसार को कुछ देना चाहते हैं, चाहते हैं ना संसार को, उन्हें इस समय अपने को चारों ओर से समेट कर, व्यर्थ से मुक्त होकर श्रेष्ठ कमाई में लग जाना चाहिए, ताकि कुछ काम नहीं आने वाला, न मान सम्मान, न धन संपदा, बुरा तो लगेगा पर कह दूं माताओं को, न बच्चे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए बच्चों के लिए भी आत्मिक भाव धारण कर लो, ये आत्माएं हैं, इनका भी अपना पार्ट है, ये हमारे घर में आए हैं, अब हमारे बच्चे हैं, हो सकता है पिछले जन्म में हम इनके बच्चे रहे हो, रहे होंगे या नहीं, इनके अपने पुण्य और पापों की अलग कहानी है, इनका भगवान से कितना प्यार है, इन्होंने कैसी जन्म जन्म भक्ति की है, उसकी अलग कहानी है ना। माँ बाप ही तो बच्चों के पूरे जिम्मेदार नहीं हो सकते, हल्का करो अपने को और अटेंशन दो श्रेष्ठ स्थिति पर। कई लोग सोचते हैं ये कैसी बात सिखा रहे, बच्चों पे ध्यान न दो, हम ये नहीं सिखा रहे कि बच्चों पे ध्यान न दो, बच्चों पे पूरा ध्यान दो, लेकिन उलझो नहीं। और ये ध्यान रखना माताओं को, माताओं की कम समझ में आती है ये बात, इसलिए मैं बार बार सिखाता हूँ सभी माताओं को, जितनी अपनी स्थिति श्रेष्ठ होगी बच्चे चरित्रवान होंगे। बिल्कुल स्पष्ट जान ले सभी माताएं, जितनी माताओं में प्योरिटी अच्छी होगी बच्चे चरित्रवान होंगे। माताएं जितना अच्छे वाइब्रेशंस में भोजन बनाएंगी बच्चे चरित्रवान होंगे, और बातों को छोड़कर श्रेष्ठ पुरुषार्थ पर अब अटेंशन देना है, क्योंकि समय हमसे बहुत कुछ डिमांड करेगा। इसलिए जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उन्हें ध्यान देना है, किसी भी चीज के पीछे अब दौड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं सम्मान के पीछे हमारा टाइम जा रहा हो, अपनी पहचान बनाने के लिए हमारा टाइम जा रहा हो, लोग हमें जान लें, हम टीवी पर आ जाएं, अखबारों में आ जाएं, इसमें हमारा टाइम जा रहा हो। अखबारों में तो पापियों के फोटो भी छपते हैं, छपते हैं या नहीं, सारा संसार उन्हें जान लेता है, ये है भाई महापुरुष, जानते हैं या नहीं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम बाबा से वरदान लें, शक्तियां ले लें, ताकि हम खुले हाथ बांट सकें। तो बाबा हमें श्रेष्ठ भाग्य देने आया है। बाबा की बहुत अच्छी बात, साकार में जब बाबा थे तो रात्रि क्लासेस प्राय ब्रह्मा बाबा का अनुभव जैसा होती थी। शिव बाबा तो सवेरे आते थे, रात को भी आ जाते होंगे कभी कभी, वो तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बाबा अपने अनुभव जैसे सुनाते थे। बच्चे बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, भाग्य विधाता हमारे हाथ में आ गया है, हमें भी नशा चढ़ जाए तो हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर बाबा कहा करते थे, जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसको भला भाग्य की कहां कमी रहेगी। तो हम सभी इस चीज पे ध्यान दें। एक चीज मुझे और याद आ गई, जिसको सभी को बहुत गहराई से जानना है। मुरली थी साकार, लौकिक में भी कोई राजा का बच्चा राजकुमार हो, उसे अपने बाप की राजाई का नशा रहता है, ये मेरी है। साहूकार का बच्चा हो उसे भी नशा रहता है, ये सारी संपत्ति मेरी है। हमें भी नशा रहे, बाबा की सारी संपत्ति मेरी है। तो पहले बाबा की एक संपत्ति का हमें नशा हो जाए। बोलो कौन सी है? हाँ, ज्ञान भी संपत्ति है, उसकी और आगे चलो शक्तियां। बाबा सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों पर हमारा अधिकार है। हमें नशा हो जाए। मुझे याद आ गया, अभी हम दीव गए थे तो दीव से आ रहे थे, रात को क्रॉस करना होता है गिरिनार का जंगल। जूनागढ़ में गिरिनार बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया ना, हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जब हम चल रहे थे तो हमें कहा, भाई तुम्हारा भाग्य हुआ तो शेर दिख जाएगा। शेर बहुत कम रह गए ना, क्योंकि वहां बारिश नहीं हो रही है, सालों साल वहां अकाल पड़ रहा है। एक गेट से पास हुए, फिर वो गेट बंद कर लेते हैं और आने नहीं देते शाम को 7 बजे के बाद। दूसरा गेट भी पास हो गया, हमने सोचा शेर तो दिखा नहीं, हमारा भाग्य शायद कम है आज। तो जैसे ही हम गेट क्रॉस हो गए, आगे चले, जंगल आगे भी है, 4 शेर सड़क पर खड़े। मैंने दूर से देखा, मैं सोचा जंगल तो पूरा हो गया कि गांव आ गया होगा, गांव की गाय वगैरह खड़ी हैं, लेकिन देखा हो तो 4 शेर हैं। उनमें से 3 जो थे, विजय हमें अंदाज हुआ कि एक माँ और 2 उनके बच्चे, वो थोड़ा ऊपर हो गए, हट गए सड़क से। ऊपर माना बहुत ऊपर नहीं, ऐसे बड़े थे, सब बड़े थे, लेकिन जो शेर था वो बाप होगा उनका, बिल्कुल वहीं खड़ा है, बिल्कुल मस्ती से, नो इफेक्ट। मैंने सोचा देखो शेर शेर है ना, वो माँ बच्चों को लेके ऊपर चली गई, उसको खतरा होता है ना, पता नहीं कौन आ गया, लाइट जलती है गाड़ी की, लेकिन शेर वहीं खड़ा है, सुरक्षा में खड़ा है, जैसे किसी ने इनको कुछ किया तो मैं हूं यहाँ। तो मैं सोच रहा था शेर के बच्चे शेर, और सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर क्या होंगे, शिव शक्तियां, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा का जो शक्तियों का वर्षा है, इसे हम स्वीकार करें, पहचाने कि उसका शक्तियों का वर्षा हमें मिल गया है। मिला है सब, क्योंकि ये ऐसी सूक्ष्म चीज है। स्थूल चीज का तो नशा मनुष्य को फट से चढ़ जाता है ना, किसी के बाप के पास 10 करोड़ है, भाई ये मेरे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म चीज है, इसलिए रोज रोज हमें इसको अपने चिंतन में लाना है। बाबा की सर्वशक्तियों पर मेरा अधिकार है, और बाबा कहा करते हैं इन शक्तियों को ऑर्डर दो। सूक्ष्म गति है, समझने की कोशिश करेंगे सभी। बाबा ने कितना सुंदर महावाक्य उच्चारण किया, जब भगवान तुम्हारे बुलावे पर आ जाता है तो क्या शक्तियां नहीं आएंगी। एकदम नशा चढ़ने वाली बात है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में आकर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में हम आए तो समझ लें शक्तियां हमारे पास आ गई। और जैसे कोई स्थूल चीज हमारे पास हो उसको हम ऑर्डर दे दे के जाओ ये काम करो, ऐसे ही इन शक्तियों को भी ऑर्डर दे दें जाओ इस समस्या को नष्ट करके आओ। करें एक्सपेरिमेंट सभी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं इस गुड फीलिंग में मैं हूं, सारी शक्तियां हमारे आसपास आ गई। जैसे आप स्थूल में देखें 8 शक्तियां इस साकार रूप में, देहधारियों के रूप में, देव रूप में हमारे सामने आ गई और हमें ऑर्डर दे दें जाओ इस समस्या को समाप्त करो। वो व्यक्ति वो आत्मा बहुत दुखी है, जाओ उसके दुख हरो। वो आत्मा बहुत पीड़ित है, जाओ उसकी पीड़ा हरो। वो आत्मा माया से हार रही है, निर्बल है, जाओ उसको बल देकर माया जीत बनाओ। ठीक है, पसंद है, करके देखना। धीरे धीरे अनुभव होने लगेंगे कि शक्तियां हमारे आदेश का पालन करती हैं और काम होता है। किसी दुखी व्यक्ति का दुख समाप्त होता है, किसी माया से हार कर निराश हुए व्यक्ति में माया को जीतने का बल आ जाता है। ये प्रैक्टिस सभी करेंगे तो बहुत अच्छा भाग्य हम सबको मिल रहा है। इस समय के महत्व को सभी बार बार याद करें, एक एक सेकंड अनमोल है, एक एक वर्ष के समान है। मैंने पहले भी सुनाया कि एक सेकंड के 10वें हिस्से का कितना महत्व है, वो उससे पूछो। दौड़ लगाते हैं ना एथलेटिक्स, 400 किलोमीटर की, कभी कभी 1 किलोमीटर की, कभी उससे भी ज्यादा 100 मीटर की। माताओं को पता है ना, दौड़ने वाले दौड़ लगाते हैं, कितने अंतर में सेकंड नंबर रह जाता है मेजर साहब, सेकंड के वहां तो 100वें हिस्से तक गिनते हैं। एक व्यक्ति का बस एक कदम आगे था, दूसरे का एक कदम पीछे रह गया, उसका गोल्ड मेडल, उसका सिल्वर मेडल आ गया। उसको पता है ना, देखो मामूली से समय का कितना बड़ा रिजल्ट में अंतर हो गया। तो हमारे लिए भी ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसके महत्व को याद करें। और एक बात आपको सुना दूं, मेरे भी मन में बहुत साल तक ये बात गूंजती रही, एक दो दिन से मुझे फिर याद आ रही थी कि ये घड़ियां याद आया करेंगी, संगम युग के ये सुंदर दिन याद आया करेंगे। अब वो लोग इस समय को याद करते हैं जो बाबा से पर्सनल मिलते थे। मुझे इसी यात्रा में 2-3 लोग मिले जिन्होंने एक बड़े नशे से कहा, हमने तो बाबा के हाथ से टोली खाई हुई है, हमें तो बाबा ने मिलके ये वरदान दिया था, लिख के रखा है। अब सोचते हैं अब तो वो समय पूरा हो गया, बाबा के हाथ से टोली लेना या बाबा की लंबी मुरली चलना, बहुत गुह्य मुरली चलना, वो भी पूरा हो गया। तो पीछे वाले दिन भी याद आते हैं और पुरुषार्थ की दृष्टि से वो दिन याद आया करेंगे कि इतना सुंदर समय हमारे पास था, हमने उसको कैसे कैसे पूरा कर दिया, खेल कूद में पूरा कर दिया। जैसे स्टूडेंट्स को, मनुष्यों को याद आता है ना, एक व्यक्ति पढ़ लिख के कलेक्टर बन गया है, दूसरा व्यक्ति चपरासी, दोनों ने बीए ही किया है, ایک نے آئی اے ایس کر لیا، دوسرا کوئی ایگزام پاس نہیں کر پایا، چپراسی بن کر رہ گیا، سمے کو مہتو نہیں دیا نا، جب پڑھنے کا سمے تھا تب گنوایا ادھر ادھر برے سنگ میں، جنہوں نے برے سنگ میں نہیں گنوایا وہ اچھے اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، سب اسٹوڈینٹس کا آج کل ہو رہا ہے، اچھے اچھے کمپٹیشن دیتے ہیں، ہائر کمپٹیشن دیتے ہیں۔ آج ایک کا سماچار، ایک ماتا جی نے فون کیا، میرا بچہ انجینئرنگ کر لیا ہے، نوکری نہیں ملی دو سال سے، گہرے ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا میرے سے بات تو کرا دو، بچے کو کہا کہ سورج بھائی کا فون ہے، بس میں سن رہا تھا فون پہ ہی آواز آتے، میں نے کہا دیکھو بھاگیہ کہ آتما ڈپریشن سے نکل بھی نہیں سکتی، اس کو اچھا بھی نہیں ہے کہ میں ڈپریشن سے نکلوں۔ پھر مجھے بتایا کہ دسویں کلاس سے اس کو ڈپریشن ہو گیا تھا، بارہویں میں بہت کم نمبر آ گئے، ڈونیشن دے کے انجینئرنگ میں بھیجا، پیسہ دے کے بھیج دیا، جیسے تیسے پاس بھی ہو گیا، لیکن نمبر تو بہت کم رہے ہوں گے، نہ تو نوکری نہیں ملتی۔ تو کوئی سمسیائیں، تو جو منس اپنے اچت سمے کو پروپر مہتو دے کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جیون بھر سکھی رہتے ہیں نا۔ ہم اس سمے کو مہتو دے کر اگر شریش پرسارتھ کریں گے تو تین یگوں تک سکھی رہیں گے نا، ایک آدھ سال نہیں، ایک جیون نہیں، تین یگوں تک سکھی رہیں گے۔ تو سبھی بابا کے اس ملے ہوئے بھاگیہ کو پہچانیں، اسے پورا مہتو دیں، یہ سندر سمے ہلکی ہلکی باتوں میں نہ بتا دیں۔ بہت بڑا بھاگیہ ملا ہے۔ بابا کہا کرتے ہیں بچے وچار کرو، بھگوان تمہارے لیے ہتیلی پر سورگ لایا ہے، کتنی بڑی چیز ہمیں ملنے جا رہی ہے۔ ہمیں ستیوگ میں جو ہمارے پاس ورثہ ہے، جو پراپرٹی ہے، وہ کتنی بڑی ہے اس کا آبھاس اب نہیں ہے، کسی بھی برہمن کو نہیں ہے۔ کیا ہوگا وہاں؟ ابھی مرلی میں آیا تھا، تمہارے شریر کنچن کی طرح چمکتے رہیں گے، کسی کو یہ کلپنا نہیں ہے۔ سوچو ایسا شریر جس میں کوئی روگ ہی نہ ہو، ایسا شریر جس کی لمبی آیو ہو، 150 سال بھی آنند لیں۔ آج کسی کی آیو 80 سال کے بعد ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، مرتیو کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ بیماری وہ بیماری، دوائی کھا کے بور ہو جاتے ہیں۔ 150 سال تک جیون کو انجوائے کریں گے، بور نہیں ہوں گے، یہ فیلنگ نہیں ہوگی ہم بوڑھے ہو گئے، کوئی مدد کرے، بچے کھانا تو پہنچائیں کمرے میں، یہ سب نہیں ہوگا۔ ایسا سندر ورثہ، بہت بڑی چیز، جہاں ہواؤں میں بھی سگندھ ہوگی، جہاں چاروں اور پرکرتی کا اتنا سوندریہ ہوگا کہ گھر سے باہر نکلتے ہی کمرے اپنے محل سے کمرے سے آنند ہی آنند انوبھو ہوگا۔ ایسا سندر ماحول، جب چاہے پشپک ویمان میں بیٹھے اور کہیں بھی گھوم آئے، کوئی پرتیبند نہیں۔ اس ورثے کی ذرا ہم کلپنا کریں، جو تھوڑا سا بھی بابا کے لیے کر رہے ہیں انہیں بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ آج ہی تھا نا شاید مرلی میں، پریوار کے پریوار آئے، دو ٹہنیاں ٹوٹ گئی، پھر بھی آئیں گے تو صحیح ستیوگ میں۔ دیکھو بھگوان کتنا رحم دل، 10 سال بھی گیان میں چلے کمار کماری، بابا کو پویترتا کا سہیوگ دیا، یگ میں کچھ سیوا بھی کی، پھر چلے گئے تو بھگوان کے پاس یہ نہیں، چلے گئے تو ستیوگ میں نو انٹری، پھر آ جاؤ کوئی بات نہیں، 10 سال سیوا کی، 1000 سال تو رہ جانا ستی سورگ میں، کتنا بڑا سکھ دیتا ہے، کتنا وشال دل ہے اس کا جو ہمیں شریش بھاگیہ دینے آتا ہے۔ آج کوئی ایسا کر دے تو باہر بورڈ لگا دیتے ہیں نو انٹری، اور وہاں انٹری رہے گی ان سب کو جنہوں نے بابا کے کاریے میں تھوڑی بھی مدد کر دی ہے، اور ہم سب تو کتنی مدد کر رہے ہیں۔ ماتائیں دیکھو اپنا گھر چھوڑ چھوڑ کے سیواؤں میں آ گئی، یہ بہت بڑا بھاگیہ ہے۔ बाबा इसको बहुत बड़े रूप में देखता है, आप सबके प्यार को स्वीकार करता है, भावनाओं को सम्मान देता है और इसके रिटर्न में बहुत बड़ा भाग्य देता है। और जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया सेवाओं में सुरेश भाई, उन पर तो भगवान कुर्बान। और उनमें से भी जो श्रेष्ठ योगी और पवित्र बन गए उनको सतयुग भी कुर्बान सारा, जो चाहे ले लें। तो ऐसा सुंदर भाग्य हमारे हाथ में आ गया है और आ जाएगा, सभी इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। ठीक है, माताएं ज्ञान सरोवर की यात्रा का पूरा फायदा उठा रही हैं, उठा रही है ना, पूरा फायदा उठाना। घर में तो अनेक झंझट होते हैं, घर तो भूल गए होंगे ना सबको, इसलिए बाबा के रूप में बैठना, कई बार अच्छे अभ्यास में रहना, कोई भी गड़बड़ न हो। ओम शांति।